फिर इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ ज़ुबान के साथ है और इसको कसम कहते हैं। फरमाया ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, तुम लोग जो मुहमल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता या पकड़ नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो इन पर वो ज़रूर तुमसे मुआख़ज़ा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या इन्हें कपड़े पहनाओ, या एक ग़ुलाम आज़ाद करो और जो इसकी इस्तेआत ना रखता हो। इससे इशारा दे दिया कि ग़ुलामी एक वक्त में ख़त्म हो जाएगी। तो वो 3 दिन के रोज़े रखे, ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है, जबकि तुम कसम खा कर तोड़ दो। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है, शायद के तुम शुक्र अदा करो। कितनी देर लगती है एक कसम का लफ्ज़ बोलने में? कसम खाता हूँ। 3 किस्म की कस्में होती हैं। छूटी कस्में, जानबूझ के खा लेना, ये तो कबीरा गुनाह है, इस पे तो कफ़ारा कुछ नहीं, सज़ा है, और या फिर माफ़ी है, इंसान दिल से तौबा करे। दूसरी कसम वो होती है जो बेइरादा, या आपने ऐसी खा ली कि जो आप तो किसी बात को समझ रहे थे कैसी थी लेकिन हकीकत उसके ख़िलाफ़ थी, ऐसी कस्मों को लफ़ कहते हैं, इसमें ना कफ़ारा है ना गुनाह है। तीसरी कस्में ऐसी होती हैं कि जो आप मुस्तकबिल के लिए खाते हैं, मिसाल है कोई कसम खा लेता है जायज़ काम की और बाद में फिर उसको वो काम करना पड़ता है, तो उसका कफ़ारा इन आयतों में हमने देखा। लेकिन इस वक्त जो नुक्ता हम देखेंगे और अपने इस पारे के थीम सच की बुनियाद पे, कि ज़ुबान से 3 लफ्ज़ निकले, कसम, आई स्वेयर, हाँ, कसम अयक्सिमु, और सज़ा कहाँ तक पहुँची? 3 दिन के रोज़ों तक। क्या पता चला? कि ज़ुबान से निकला हुआ एक झूठ बस दफ़ा 3 दिन के खाने पीने और शहवत को छोड़ने के बराबर हो जाता है। असल ये बात है कि ज़ुबानों को काबू में रखो। जो बहुत बोलेंगे वो बहुत गलतियाँ करेंगे, जो जितना बोलेगा उतने झूठ बोलेगा। तो हमने अपना मुहासबा करना है, क्या मैं झूठी कस्में तो नहीं खाती, बात पे बात कस्में तो नहीं खाती? क्या जब मेरे ऊपर कोई कफ़ारा होता है तो मैं उसको अदा करती हूँ? क्या मैं हदों से आगे तो नहीं बढ़ती? क्या पेट भर कर खाते हुए, यानी ओवर ईटिंग करते हुए मुझे ये बात याद रहती है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, कि अल्लाह को ज़्यादती करने वाले पसंद नहीं? अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम बैलेंस रहें, हर रवैये के अंदर बराबर हैं, बात करते वक्त भी सोच के बोलें, सोच के काम करें। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ बातों का तذکرہ किया जो हराम है। अभी तक तो ये था ना कि हलाल को हराम ना करो, तो अब बताया जा रहा है कि हराम क्या है। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल असलाम, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और ये पानसे, ये सब गंदे काम हैं, इनसे परहेज़ करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुगस डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, फिर क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? मशवरा मांगा जा रहा है, चॉइस ली जा रही है, नहीं, डांटा जा रहा है। फहालन तुम मुंतहून, क्या रुकते हो कि नहीं, बाज आते हो कि नहीं, काम फिर भी यही करोगे? तो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने हुक्म अदूली की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ हुक्म पहुँचा देने की जिम्मेदारी है। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इन पर कोई गिरफ्त ना होगी, बशर्ते कि वो आइंदा इन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गईं, और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज़ से रोका जाए उससे रुकें, और जो फरमाने इलाही हो उसको माने। फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयात है। इन आयात में एक तो शराब पे बात हुई, शराब की हुरमत के बारे में ये आखिरी हुक्म है। अरब मुआशरा शराब के नशे में चूर था, पानी की तरह शराब पी जाती थी। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत की रियायत करते हुए हुक्म दिया कि कोई बात नहीं, तुम एकदम नहीं छोड़ सकते तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। पहले सूरत नाहल की आयतें उतर गईं जिसमें रिस्के हसन से अलग करके शराब को पेश किया। फिर उसके बाद नफ़े और नुकसान को बुनियाद बना के इंसान की फितरत को ज़िंदा किया कि वो फ़ायदे को चाहता है। खैर, लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोग फिर भी पीते रहे। तो फिर शराब की हुरमत का तذکرہ पीछे हम पढ़ चुके कि ला तक्रबु सलात वअंतुम सुकारा, बता दिया कि कुछ लोग तो पहले दर्जे पे छोड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर से छोड़ते हैं, यह हकीकत है। आप कोई भी नेकी का काम किसी को कहेंगे ना, या किसी बुराई से रोकेंगे, कुछ तो इशारे के मुंतजर हैं। अच्छा, ये बुरी बात है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, चले छुट गया। कुछ कहेंगे नहीं ना भी खैर है, फिर वो कोई चोट खा के हटते हैं जब उसके उस गलत काम से उसको कोई नुकसान होता है। कुछ फिर भी नहीं हटते, और बिल आखिर अल्लाह ताला ने यहाँ इसको क्या कह दिया, इन्नहु रिज्स, ये गंदी चीज़ है। रिज्क कहते हैं ऐसी चीज़ को जिससे घिन आए, फजला, यानी ये शैतान का फजला है। सोचिए तो दिल भी ख़राब होता है। लोग कहते हैं शराब के बारे में कुरान में हराम का लफ्ज़ नहीं है, हालांकि ये शराब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि शराब तेरा सत्यानाश, कि अल्लाह ने तेरा नाम जुए और बुतों की पूजा और ऐसी गंदी चीज़ों के साथ लिया है। हकीकत यह है कि शराब वो चीज़ है कि जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनती है, उम्मुल खबाइस कहा जाता है। आज के माशरे बेचैन है, परेशान है, वो इसको बंद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। कितनी कोशिशें की, लेकिन इस आयत के नाजिल होते ही हुआ क्या कि मुसलमानों के घरों में महफिलें बरपा थी, शराब पी और पिलाई जा रही थी। हज़रत अनस कहते हैं कि जूँ ही आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा, मैंने जाके मदीना शहर में मुनादी कर दी, पुकार लगा दी कि लोगों शराब हराम हो गई। कहते हैं ये बात करने की देर थी कि लोगों के हाथों से जाम गिरे, होंठों को लगे हुए प्याले हटे, मटके फूटे। कहा अल्लाह के नबी इसका सिरका बना लें? कहा नहीं बना सकते, जिसका ज़्यादा हराम है उसका थोड़ा भी हराम है। फिर जो शराब बही, कई दिन तक मदीने की गलियों में से शराब की बसांत आती रही। हम सब यहाँ रुके। असल में इस आयत का टॉपिक मैं शराब लेने की बजाय आखिरी हिस्सा ले लूँ कि क्या वजह है कि लोग अल्लाह की बात को सुन के मानने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आज मेरे सामने रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ही हमने यही आयतें डिटेल से की हैं। आप में से अगर कोई साथी उस क्लास में थे सबीलुल जन्ना में, तो उन्होंने पढ़ी होंगी कि किस तरीके से मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स खर्च किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से। पूरे 13 साल तक अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट चलती रही कि जिसकी वजह से शराब को हराम करें, हराम से मुराद के बैन करें, उसके नुकसानात लिवर पे, इंसानों की ज़ात पे। और इस आयत में तो अल्लाह ताला ने दो तरह के नुकसान बता दिए, एक दुनियावी नुकसान, युक़या बैनकुम अलअदावत वल बग़्दा, अदावत होगी, बुग़्स होगा, जहाँ शराब होगी वहाँ लोगों में कीना होगा, शराबी लोग घर वालों के लिए खुशी का सबब नहीं होते, जिस बिज़नेस के अंदर शराब होगी वहाँ पे हमेशा ही लड़ाई झगड़े रहेंगे। और दूसरा इसका आखिरत का नुकसान कि यसुद्दकु मन ज़िक्रुल्लाहि व निस्सलात। लेकिन आप गौर करके देखिए कि इस्लाम का सिर्फ एक हुक्म आया कि बस फजतनिबू फहल अंतुम मुंतहून। सहाबा इकराम ने कहा इंतहीना या रब्बना, ऐ अल्लाह हम बाज आ गए। ये कुव्वत पैदा करने की ज़रूरत है। ये कौन सी कुव्वत है कि जिसके बाद बात को सुन के मानना आसान हो जाता है। इसको अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान कर दिया कि ईमान पहले बहुत छोटा सा होता है। थोड़ी सी तकवा पे बात करूँगी, क्योंकि तकवा है वो चीज़ कि जो इंसान से गुनाहों को छुड़ाती है। मालूमात के वजह से लोग गुनाह नहीं छोड़ते, किसको नहीं पता कि शराब बुरी चीज़ है, फिर भी पीने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं, पिलाने वाले भी बहुत हैं। लेकिन वजह क्या है, आखिर ये गंदी चीज़ साफ़ क्यों लगती है? उसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर तकवा की कमी है। तकवा क्या है? इंसान को चलाने वाली फोर्स, जिसकी वजह से इंसान भागने लगता है, आगे से आगे जाता है। इंसान जब ईमान कबूल करता है ना, तो उस वक़्त वो एक छोटी सी कोम्पल की तरह होता है, कच्ची हवा के पहले हुलारे से गिर जाएगी। इसलिए जो न्यू मुस्लिम होते हैं ना, ये बड़े मजबूर होते हैं बेचारे, बड़ी हमारी तवज्जो चाहते हैं, जितने प्यार और शौक से आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाएंगे अगर इनको हमने ना थामा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं वामिलुस सालेहात, नेकियां शुरू कर दो। तुम तकवा पैदा करना चाहते हो, उठो अमल सालेह करो, नमाजें शुरू कर दो। आप कहते फ़ायदा क्या, समझ तो नहीं आती, फिर भी पढ़ो। फ़ायदा क्या, उसमें तवज्जो नहीं होती, उसमें इधर से उधर ख्याल जाता है, कुछ भी हो करते रहो। जब आप अमल सालेह पे आ जाते हैं ना, तो आपका ईमान थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कोम्पल थोड़ी सी मजबूत होने लगती है। ईमान बढ़ता है तो अमल सालेह बढ़ते हैं, और अमल सालेह जितना बढ़ता है उतना ईमान बढ़ता है, ये एक रिवर्स एक्शन चलता है। जब ये मामला होता है ना, पहले दर्जे पे इंसान अमल सालेह पे आ गया, इसके बाद क्या होता है कि ईमान का एक और रंग आएगा, और वो क्या है, वत्तकू व आमनू। अब ईमान और तकवा एक और लेवल है। फिर अब तुम्हें नमाज का मज़ा आएगा, अब ये तुम्हारी रूटीन बनेगी, फिर नमाज तुम्हारी मारी बंदी नमाज नहीं रहेगी, پھر سچ بولنے کی عادت جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گی اور انسان اس نیکی کا پختہ ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر لگ جائے گی, پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو سجاتا جاتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان ہے نا, اس کی تھوڑی انکم ہوتی ہے, نیا نیا اپنا اسٹیٹس شروع کیا ہوا ہے, پرانی گاڑی کسی سے لے لی, گھر بھی چھوٹا سا ہے, پرانا سیل فون ہے, چلتا جاتا گزارا. لیکن آہستہ آہستہ کاروبار چمکا, بڑا ہوا, اب جو ہی ہمارا مال بڑھتا ہے, ہماری انکم بڑھتی ہے, تو اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے نا, ہم زیادہ اچھی چیزیں لینے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح جو ظاہری طور پہ ہماری انکم بڑھتی ہے تو ہمارا حال, رنگ, حلیہ اچھا بدل جاتا ہے نا, اسی طرح ہمارا تقوی جب بڑھتا ہے نا, تو تقوی بھی ہماری انکم ہے. جس کا تقوی جتنا بڑھتا جائے گا نا, اتنا زیادہ اس کے اندر پھر نیکیاں کرنے کا شوق آئے گا. اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی عجیب لگتی, لو صرف چار فرض پڑھوں, نہیں مجھے تو کچھ اور کرنا, اچھا یہ نیکی یہ تو سارے کرتے ہیں, میں کچھ اور کروں. وہ پھر اس طرح اچھل اچھل کے نیکیاں کرتے ہیں کہ کوئی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا, اور وہ سجاتا ہے. جیسے ایک سادے کپڑے کو آپ پہن لے, سی کے تو پہن لیا نا, لیکن کچھ لوگ سجاتے ہیں, موتی لگاتے ہیں اس میں سے, کڑھائی کی بیلیں اور کیا کچھ لگاتے ہیں. جس طرح انسان اپنے ظاہری چیزوں کو سجاتا ہے, اسی طرح تقویٰ جو ہے نا انسان کی نیکیوں کو سجاتا ہے, پھر وہ خوبصورت طریقے سے عبادت کرتا ہے. اور تقویٰ جو ہے یہ اتنا خوف بھر دیتا ہے کہ صرف بندہ حرام سے نہیں بچتا, مکروہ کیا شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے. کہ جیسے سانپ ہوتے ہیں نا, تو سانپوں کی ٹوٹل 2400 یعنی 2400 مختلف قسمیں ہیں, لیکن اس میں سے صرف 200 قسم کے سانپ جو ہیں یہ پوائزنس ہوتے ہیں, زہریلے ہیں. 2200 قسم کے سانپ کچھ نہیں کہتے, لیکن آپ ذرا سانپ کا لفظ لے کے دیکھیں, کوئی کہتے نہیں پکڑ لو یہ پوائزنس نہیں ہے, کوئی پکڑتا ہے؟ بس یہ ہے تقویٰ کہ 2200 سانپوں کو جو کچھ نہیں کہتے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ان سے بھی بچتے ہیں کیونکہ میری جان لے لے گا صرف 200 کے شبے میں. تو گناہوں میں ہر اس گناہ کو ہم چھوڑیں گے جو ہماری جان لے لے, جو ہمارا ایمان لے لے. تو تقویٰ کو بڑھاتے جائیے, آپ کی زندگیوں میں عمل صالح کے پھول بھوکتے جائیں گے, حتیٰ کہ واللہ یحب المحسنین. پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہیں کرتا, پھر اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. یہی ہے سچ, سب سے بڑا کائنات کا سچ ہے ہی یہ کہ انسان دنیا بنانے والے کو پہچان لے اور خود اپنے مقصد حیات کو پہچان لے, اور اس کائنات کی حقیقت کو پہچانے, اپنے مقصد حیات کو پہچانے, اور آخرت اس کے سامنے آئے. یہ چار سچ لکھ لیجئے. سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ دنیا بنانے والے کو پہچانیے کون ہے, 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جس کو اللہ کی پہچان ہوگی, سچ کو پا گیا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا زندگی میں. اس کی سوچ جھوٹی نہیں ہوگی, اس کی آنکھیں جھوٹی نہیں رہیں گی, اس کی زبان جھوٹی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد مجھے کیوں پیدا کیا, پرپز آف لائف, مقصد زندگی, میں کیوں آیا, میری حیثیت کیا ہے. جس نے اپنی ہستی کو پا لیا, آپ کہہ لیں اپنے آپ کو پہچان لے, من عرف نفسہ فعرف ربہ. تیسری چیز ہے اس دنیا کی حقیقت کو جو پا گیا, ہے کیا یہ دنیا, چار دن کی چاندنی, سب میرے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں, میں نے بھی جانا ہے, یہ ہے سچ. کبھی سوچا آپ نے اس کو سچ؟ یہ سچ سمجھ آ گیا نا, تو پھر دنیا مردہ بکری سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی ہمارے لیے. جتنی غلطیاں ہوتی ہیں سچ کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم اس دنیا کو ایور لاسٹنگ بنانا چاہتے ہیں, آج بنا رہے ہیں, کل بگڑ رہی ہے, کل بگڑے گی پھر بنائیں گے. اور چوتھا سچ کائنات کا کیا ہے کہ آخرت کی اصل حقیقت پرکھو, ہوم فیھا خالدون, ہمیشہ رہنا ہے, ہائے میں ہمیشہ رہوں گی, با کیا بنے گا. اور جس کو یہ آخرت سمجھ آ گئی, پھر وہ جھوٹ پہ زندگی نہیں بسر کرے گا, پھر کان نہ کترا, پھر نیکیاں ہوں گی, پھر انسان آگے سے آگے بڑھے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں وہ اللہ کو تو دیکھے گا ہی, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, یہ احساس اس کے اوپر رہے گا. اس کے بعد سچ کے راستے کی کچھ آزمائشیں, اور جب بھی بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے, اللہ والا بننا چاہتا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے, تو فوراً اس کی آزمائش ہوتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا. شکار کو ایسے سمجھ لیجئے کہ عربوں کی مرغوب غذا تھی, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پسندیدہ مشغلہ. आज के बच्चे हो सकता है कि वीडियो गेम्स उतने शौक से ना खेलते हों जितने शौक से अरब लोग जो थे वो शिकार खेलते थे। अल्लाह ने कहा अच्छा आओ फिर तुम्हें बताऊं कि आजमाइश तो हमेशा पसंद की चीज़ पे आती है। जो चीज़ आपका वीक पॉइंट होता है ना उसी के ऊपर आजमाइश आती है। कोई बच्चा आपको बड़ा प्यारा होता है उसी की तरफ से आप आजमाए जाते हैं। जो कपड़ा आपको बड़ा प्यारा होता है वही जल जाता है, जो प्लेट आपको अच्छी लगती है वही टूटती है। ये फितरत का असूल है, क्योंकि अगर चीज़ प्यारी ना लगे तो टूटने का या गिरने का या जलने का या नुकसान का तकलीफ़ कहाँ होगी। तो असल बात है कि अल्लाह जिसको अपने रास्ते में आजमाइश में मुब्तला कर दे, अगर वो कामयाब हो गया तो वो उस आजमाइश में से सुरखरू हो गया। और याद रखिए यहाँ एक और बात भी है कि ये आजमाइश की चीज़ें तुम्हारे हाथ में होंगी। गुना तब नहीं छोड़ना कि जब कर ही नहीं सकते, गुना हाथ में है। हराम चीज़ ज्यों हाथ लगाओ और पकड़ लो, लपक के पकड़ लो, इर्द गिर्द फिरेगी तुम्हारे गुना की चीज़। लेकिन तुमको नहीं, मैं मुत्तकी बन गया, मेरे तकवा की दौलत बढ़ गई, मैंने अपने आप को बहुत गनी कर लिया, अब मुझे ऐसी चीज़ों को नहीं लेना। हाँ लेकिन ये कैसे होगा, ये देखने के लिए कि तुम में से कौन इससे गायबाना डरता है। फिर जिसने इस तंबीह के साथ अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावुज़ किया इसके लिए दर्दनाक सज़ा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, एहराम की हालत में शिकार ना करो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो वो जानवर जो इसने मारा हो इसी के हम पल्ला एक जानवर इसे मवेशियों में से नज़र करना होगा, जिसका फ़ैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे और ये नजराना काबा पहुँचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफ़ारे में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या इसके बकदर रोज़े रखने होंगे ताकि वह अपने किए का मज़ा चखे। क्या पता चला कि इंसान अपने गुनाहों का मज़ा चखता है। लियज़ूक वबाल अमरी, यहाँ हम अपना मुहासबा करेंगे। क्या मैं अल्लाह को बिन देखे उससे डरती हूँ? क्या आजमाइश के वक्त पे मैं पीछे तो नहीं हट जाती? क्या जब कभी कोई मुसीबत मुझ पे आती है तो मैं इस बात का एहसास करती हूँ कि ये मेरे ही किसी गुनाह की सज़ा है? पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, आओ नई ज़िंदगी शुरू करो। पिछली ज़िंदगी पे आंसू ना बहाओ, बस शुक्र करो कि अल्लाह ने ज़िंदगी में इस किताब के साथ जोड़ दिया। लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत को दोबारा किया तो अल्लाह इससे बदला लेगा। अपने लिए मुहासबे का नुक्ता लिखेंगे। क्या मैं किसी बात का वबाल सुनकर फिर भी उसको करती हूँ? अल्लाह सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया, जहाँ तुम ठहरो वहाँ भी उसे खा सकते हो और काफ़िले के लिए ज़्यादा राह भी बना सकते हो। अलबत्ता खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया, बस बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से। कौन सा अल्लाह? वत्तकुल्लाहल्लज़ी तुहशरून, जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। मुहासबा करेंगे। क्या मुझे यकीन है कि एक दिन घेर कर मुझे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा? कभी कोई अदालत का मंजर देखा हो, किसी वजह से खुदा न खास्ता कोर्ट में जाना पड़ा हो, उस वक्त ज़रा मुजरिम के ऊपर नज़रें डाल के देखें। एक छोटे से कटहरे में बंद किया जाता है, हथकड़ियाँ होती हैं, चेन्स डली होती हैं। क्या होगा उस दिन जब अल्लाह के सामने पेश की जाऊंगी?